Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Girinibham Charuchandravatansam Ratnakalpojjalangam Parasamrigavara Bhitihastam Prasannam Padmasinam Samantat Stutamamaraganir Vyagrakrityam Vasanam Visvadyam Visvavandyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padmabhavam Vasishtam Saptim Chatatputra Parasarancha Vyasam Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogindramatha Sisishyam Sri Shankaracharya Mathasya Padma Padancha Hasta Malakancha Sisyam Tanto Takam Vartika Karamanyan Asmat Gurum Santatumanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Shreyah Prapti Nimittaya Namaha Somartha Dharine Om Shanti Shanti Shanti
Oh. Krishna Yajurvediya Upanishad Svetashvatar Upanishad ke antargat 5th adhyay mein 9th mantra hai.
बालाग्रसत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भावो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते नैव स्त्री न पुमाने स न चैवायं न पुंसकः यद्यत् शरीरमादत्ते तेन तेन सरक्षते संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैर् ग्रासाम्बवृष्ट्या चात्मविवृद्धिजन्मः कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि स्थाने सुरूपान्य विसंप्रपद्यते
प्रसंग चल रहा है जीवात्मा के स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं कि जीवात्मा कैसा है कितना बड़ा है और कैसा है इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं स्थूल शरीर में वह जीवात्मा अंगुष्ठ परिमाण का है सूक्ष्म शरीर में वह जीवात्मा आराग्र भाग परिमाण का है आरा शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में घोड़े का जो चाबुक होता है उस चाबुक के जो अंतिम छोर है नोक है उसमें एक लोहे का टुकड़ा लगाया जाता है उस लोहे के टुकड़े को आरा कहते हैं यूं तो प्रचलित भाषा में आरा शब्द का अर्थ लकड़ी चिरने की जो आरी है उसको आरा कहते हैं बड़े को आरा छोटे को आरी ये संस्कृत का ही शब्द है ये भी भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज जी ने आराग्र मात्र इस पद की व्याख्या की है, प्रतोताग्र प्रोत लोह कंटकाग्र मात्रो। प्रतोद शब्द का अर्थ होता है घोड़े का, घोड़े को चलाने वाला, उसको कुर्रा बोलते हैं किसी शब्द में, चाबुक बोलते हैं घोड़े को मारने वाला, चाबुक। एक रस्सी विशेष होता है, सूक्ष्म डोरी है, लेकिन उस डोरी को शक्तिशाली और तेज बनाने के लिए उसके आगे कोण में, नोक में एक छोटा सा लोहे का नोक लगाया जाता है, उसी को यहां आरा कहा। अंगुष्ट परिमाण से वो काफी छोटा है, इसीलिए उसका उपमा दी गई है। अब कारण शरीर में वो आत्मा कितना बड़ा है, बालाग्रसतभागस्य सतधा कल्पितस्य च, उपमा दे रहे, पहले दृष्टांत दे रहे हैं। हमारे जो मस्तक का केस है बाल, उसका जो अग्रभाग, अग्रभाग का मतलब होता है जो बाल के नुकीला भाग, सिर के साथ जुड़ा हुआ जो भाग है वो काफी मोटा होता है, लेकिन जो बाहर का भाग लटकता हुआ उसके जो अंतिम छोर है वो काफी सूक्ष्म होती है। उसी बात को यह संकेत किया, बाल अग्र, केस के जो है अग्रभाग। शतभाग से उसको पहले खड़े चीरो, सौ खड़े चीरा करो, वो तिरछा टुकड़ा नहीं है, खड़े चीरा है वो। अब विचार करो कि वो कितना सूक्ष्म होगा, वो उसका भी फिर सौ भाग करो प्रति एक का, कल्पितस्य च, शायद प्रयोग में क्रिया के द्वारा उसका खड़ा चीरना ये संभव नहीं होगा, तो बोले कल्पना कर लो, कल्पना कर लो कि बाल का जो अग्रभाग उसको सौ खड़ा चीरा करो, उसमें भी जो एक चीरा रहेगा उसका फिर सौ चीरा करो, कितना बड़ा होगा वो। बड़े आश्चर्य की बात है, भागो जीवा स विज्ञेय, वो जितना सूक्ष्म हो सकता है उतने ही सूक्ष्म जीव का स्वरूप है, अवस्था है, ये उतने परिमाण का इतना सूक्ष्म है। अब ये परिमाण शरीर के जो स्नायु को लेकर की गई है, एक तो होता है हृदय और दूसरा होता है हृदय में रक्त प्रवाही का जो स्नायु तंतु है, जैसे कि अपने अन्य प्रश्न आदि उपनिषदों में सुना है, सतम चैका हृदय से नाड्या तासम उद्दान अभिनिस्मृति का, द्वा सप्तति प्रतिशाखा नाड़ी नाम सहस्राणी भवती, प्रश्नोपनिषद का ये वाक्य श्रुति है। हमारे शरीर में नाड़ी कैसे है, तो बोले 101 मुख्य नाड़ी है, उसमें से एक सुरक्षित है, बाकी जो 100 नाड़ी हैं, प्रति एक नाड़ी का, वो नाड़ी कितने परिमाण का है, तो वही बालाग्र भाग का है। केस के जो अग्रभाग सूक्ष्म है उसको 100 चीरा लगाने पर जितना परिमाण का होगा उतने परिमाण का ये नाड़ी है जो मुख्य नाड़ी है। उस 100 में से फिर पुनः 72 प्रति एक का 72,000 शाखा बना लो, खड़े चीर कर, कितना चीरोगे, कहां तक चीरोगे, तो ये जो कहा जाता है व्यवहार में, बाल के खाल निकालना बोलते हैं ना, ये शब्द प्रयोग किया जाता है व्यवहार में, ये तो बिना वजह बाल के खाल निकाल रहा है। तो यही है बाल के खाल निकालने की प्रक्रिया, बिना वजह। तो कितना चीरा करेंगे? 72 करोड़ नाड़ी होंगे शरीर के अंदर, बोलो कम है? अब जो ये सीलिंग देख रहे हो ना, छत फॉल सीलिंग किया है, ये यहां से एक किसी प्लेट को निकालकर ऊपर देखोगे तो खाली तारों का जाल है उसके ऊपर, बिजली के तारों का जाले जाले, बल्ब के लिए इधर से उधर, उधर से उधर, कहीं माइक का तार है, कहीं बिजली का तार है, कहीं एयर कंडीशन का तार है, तार ही तार डाल रखा है। इसी तरह ये शरीर में सब जाले जाल है, नशे ही नशा का, नाड़ियों का जाल बना हुआ है। अब उसके अंदर जीव मच्छी फंस गई है और क्या। ये तो स्थूल नाड़ी है जिसकी चर्चा यहां हो रही है। ये कोई वैज्ञानिक और किसी लेबोरेटरी में पकड़ने में आने वाली नाड़ियां नहीं है ये। और जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके नाड़ियों को ठीक करते हैं वो तो स्थूल नाड़ी है। तो डॉक्टर कहते हैं ना कि हृदय का कोई छिद्र ब्लॉक हो गया तो वो ब्लॉक होने का अभिप्राय है कि उस हृदय को जो रक्त प्रवाही का नाड़ी है उस नाड़ी संकीर्ण हो गया अंदर से, तो उसको बाईपास करते हैं। तो बाईपास करने का सिस्टम क्या है? उस नाड़ी को निकाल के फेंक देते हैं, पांव में से शरीर से कोई और दूसरा नाड़ी ले जाके उसमें जोड़ देते हैं। वो तो कर सकते हैं, लेकिन अभी ये विज्ञान इतना आगे नहीं पहुंचा है। जैसे आंख के रोशनी प्रवाहक जो नाड़ी होती है आंख के अंदर, जो हृदय से रोशनी उस नाड़ी के माध्यम से आंख के गोलक में आती है और आंख देखने में समर्थ होती है, तो कई बार वो नाड़ी सूख जाती है। तो डॉक्टर लोग बोल देते हैं भाई अब तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले ये गोलक तो बिल्कुल ठीक है, गोलक में गड़बड़ी होती तो हम ठीक कर देते ऑपरेशन ऑपरेशन कर करके। गोली में गोलक में गड़बड़ नहीं है, ये गोलक के अंदर जो रोशनी आने की जो नाड़ी है सूक्ष्म होती है वो सूख गया है। अब उसको कहो कि वो बदल दो, जैसे अब यहां का बदला जाता है तो यहां का भी बदल दो। तो वो कहेगा वो हमारे पकड़ में नहीं आता है, वो नाड़ी पकड़ में आ जाएगा जिस दिन वो आंख की जो वो भी ठीक कर देंगे, कहीं से दूसरी लाएंगे वो ठीक कर देंगे। नाड़ियों का विज्ञान बड़ा विचित्र है और शायद उसी को लेकर ये संकेत कर रहे हैं कि बालाग्र शतभाग से सतता कल्पितस्य च, क्योंकि वो जीवात्मा शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग में वो इस तरह उसका अपना अस्तित्व दिखाता है। इसका मतलब है कि वह संचरण करता है, वो सभी जगह रह सकता है, जा सकता है। तो उसकी कल्पना से यहां उसकी परिमाण बताती है। जीव इतना सूक्ष्म है ये कहना अभिप्राय है। भागो जीव सविज्ञ, तुमको उस तरह जानना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था में तो इतना सूक्ष्म होता है। ये इसलिए कहा जाता है, कारण शरीर कितना बड़ा है इसका कोई परिमापक ही नहीं है। कारण शरीर का कितना बड़ा है ये कोई परिमाप नहीं है। जैसे सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा है तो हृदय परिमाण का है, स्थूल शरीर कितना बड़ा है तो ये कहने की जरूरत नहीं। आप लोगों को अपनी हाइट किसी से भी नाप सकते हो, नपवा सकते हो। सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा है तो अंगुष्ठ परिमाण का ये उसकी परिमाण है, लेकिन कारण शरीर कितना बड़ा है ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कारण शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म अवधारणा करके उस कारण शरीर में अभिव्यक्त हुआ हुआ जो चिदाभास है उसको बालाग्रसत भागस्य सतत कल्पितस्य भागः, इतना छोटा इतना सूक्ष्म कहा। पानी में जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं वो इतने सूक्ष्म है कि आप खुले आंखों से उन बैक्टीरिया को नहीं देख पाओगे, लेकिन उस पानी की जो बैक्टीरिया हैं वो आपकी तरह स्वतंत्र बड़े शरीर वाले हैं, स्वतंत्र शरीर वाले हैं। उन बैक्टीरियों का भी स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। बोलो, केवल तुम्हारे तीन शरीर है ये बात नहीं है। जैसे तुम्हारे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसी तरह वो पानी की जो बैक्टीरिया हैं, जो आजकल बड़ा चर्चा में आ रहा है स्वाइन फ्लू, जो छींक के माध्यम से, जुखाम के माध्यम से, छींक के माध्यम से दूसरे में संक्रमित होता है, वो संक्रमित होने वाले जो स्वाइन फ्लू क्या है, वो जीव समूह हैं। आप हम जैसे ही जीव समूह हैं वो भी। ये बात अलग है कि हम कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों को संयुक्त रूप में भोगने के लिए इस शरीर में आए हैं, वह केवल अशुभ कर्म को भोगने के लिए उस शरीर में गए हैं। आज जिस स्वाइन फ्लू से हम पीड़ित हैं, एक दिन हम स्वाइन फ्लू होकर बैठे हैं, वो सब हो चुके हैं यदि हमारा शास्त्र प्रमाण है और हम शास्त्र के प्रमाण को मानते हैं, तब वो स्वाइन फ्लू के जो जीवाणु हैं एक दिन हम उस योनि में पहुंच चुके हैं। 84 लाख योनि कि पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है जब ये शास्त्र ने कहा है, तो वह स्वाइन फ्लू की जो शरीर है, जीव है, वो 84 लाख के अंतर्गत ही आते हैं। पानी की जो बैक्टीरिया है वो एक दिन हम हो चुके हैं। वो इतनी सूक्ष्म है कि आंखों से नहीं दिखता, उसको के दूरबीन के द्वारा उसको देखा जाता है, यंत्र के द्वारा उसको देखते हैं। उसके भी तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। आप विचार करो कितना सूक्ष्म होगा। मुझे लगता है उसके शरीर में भी 72 करोड़ नाड़ी हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब विराट शरीर में 72 करोड़ नाड़ी हो सकते हैं, तो आपके शरीर में 72 करोड़ नाड़ी हो सकते हैं, तो उसके शरीर में भी 72 करोड़ नाड़ी हो सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि उसका भी स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के सिस्टम तो वही है, नाड़ी के बिना स्थूल शरीर बनेगा नहीं। उसके अंदर फिर सूक्ष्म शरीर, फिर उसके अंदर कारण शरीर उस जीव के। ये नहीं समझ लेना कि कारण शरीर केवल मनुष्यों के होते हैं, ये नहीं समझ लेना सूक्ष्म शरीर केवल मनुष्य के होते हैं, प्राणी मात्र के होते हैं, जीव मात्र के होते हैं कारण शरीर। यहां तक कि जो प्राणी नहीं जी उन जीवों का भी कारण शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे उद्भिज्ज जीव। ब्रह्मसूत्र की चर्चा में आजकल इसकी चर्चा काफी हो रही है। उद्भिज्ज जीव, इनके भी तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और उसके अंदर आत्मा, चेतना विद्यमान होने के कारण उस आत्मा को सूक्ष्म कहा गया, इतना सूक्ष्म है वो। अज्ञान कितना बड़ा है यूं तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन शंकराचार्य जी ने शिवानंद लहरी नामक एक शिव स्तुति है, उसमें शिवजी से विनोद भाषा में कही है शंकराचार्य जी ने। एको वार जवान्धवच्छिति नभो व्यक्तम तमो मंडलम भीत्वा लोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रव वेद्यः किं न भवस्य हो घनतरम् कीदृक् भवेन्मत्तमा तत्सर्वं विपनीयमे पशुपते साक्षात प्रसन्नो भव। एको बारी जवांदवा, सूर्य अकेला है अंतरिक्ष में, सूर्य अकेला है, दो सूर्य नहीं अंतरिक्ष, एक ही सूर्य है, एक अंतरिक्ष में एक सूर्य है, अनंत कोटि अंतरिक्ष में अनंत कोटि सूर्य हैं। ये जो वर्तमान हम जिस अंतरिक्ष की चर्चा कर रहे हैं, उस अंतरिक्ष में एक सूर्य अकेला ही है। सूर्य का नाम बारिज बंधु, कमल का मित्र, क्योंकि लोक व्यवहार में जिस किसी का भी प्रिय मित्र सामने आता है तो उसको देखते ही उसका चेहरा खिल उठता है। इसी तरह सूर्य के उदित होते ही कमल खिल उठता है, इसीलिए शंकराचार्य जी ने सूर्य का नाम रखा वारिज बंधु, मित्र। और सायंकाल जब सूर्य चले जाते हैं तो बंद हो जाता है। किसी का खास मित्र चला जाता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है, लोग व्यवहार में भी दिखने में आता है। इसी तरह कमल को खिलाने और मुरझाने का कारण बनने के कारण वह उपस्थिति से, संयोग से कमल खिल जाता है, वियोग से कमल मुरझा जाता है। जैसे व्यवहार में मित्र के संयोग से प्रसन्नता होती है और मित्र के वियोग से खिन्नता होती है, इसी तरह सूर्य को कमल का मित्र कहा। एको वार जवान दवा चिति नभा, चिति शब्द का अर्थ होता है अंतरिक्ष, नभस शब्द का, चिति माने पृथ्वी और नभस शब्द का होता है अर्थ होता है अंतरिक्ष। चिति पृथ्वी, नवा अंतरिक्ष, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक फैला हुआ इतना बड़ा अंधकार, नापो तो साध्य नहीं है, संभव नहीं है, सीमा नहीं है। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तो फैला हुआ है, इतना बड़ा जो अंधकार है, उतना अंधकार को सूर्य अकेले ही अपनी उपस्थिति से नष्ट कर देता है। क्या ताकत है उस सूर्य में, कितनी शक्ति है उस सूर्य में, अकेले अपनी उपस्थिति से पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष में फैले हुए अंधकार समूह को, इतना बड़ा अंधकार को एक सेकंड में तहस नहस करके नष्ट कर देता है। इसी तरह एक अंधकार मुझे भी ढक रहा है। सूर्य क्या करता है कि उस अंधकार को नष्ट करने के बाद स्वयं अपने आप प्रत्यक्ष होता है। इसी तरह एक अंधकार मेरे, मुझे है, मुझ में है और मुझे, मेरे स्वरूप को वो ढका हुआ है। और कितना बड़ा है वो अंधकार, बोले मेरा हृदय ही अंगुष्ठ परिमाण का है, वो भी स्थूल शरीर की दृष्टि से कह रहे हैं अंगुष्ठ परिमाण। और उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूं और उसी के अंदर वो अज्ञान अंधकार बैठा हुआ है। अज्ञान सिर में है, आंख में है, कान में है, नाक में है, पेट में है कि पांव में है, कहां है वो अज्ञान? आप जिस अज्ञान की चर्चा करते हो वो अज्ञान आपके किस जगह पर है, है? आंख में तो नहीं है, कान में तो नहीं है, कहां पर बैठा है? तो हृदय, यही ना है। और तुम कहां बैठे हो? तो बोले तुम भी हृदय में बैठे हो। और वो परमात्मा कहां बैठा है? तो वो भी उसी हृदय में बैठा है। और वो हृदय कितना बड़ा है? तो बोले अंगुष्ठ परिमाण का। इतना छोटा सा कमरा है, एक छोटी सी मोमबत्ती जला लो तो भी उसके अंदर के अंधकार को वह तुरंत नाश कर सके, ऐसा लगता है ना? बड़े हॉल के, रात्रि के समय में बड़े हॉल में एक छोटा सा मोमबत्ती जला दो, मोमबत्ती तो वही उस हॉल के बहुत से बीच में रख दो उसको जलाकर, तो बहुत से अंधकार को तो वो नष्ट कर देगा, पूरी तरह उसको सफाया भले ही ना कर ले, है ना? मोमबत्ती उस हॉल के अंधकार को पूरी तरह सफाया तो न करे भले ही, लेकिन काफी अंश में तो वह अंधकार को हटा सकता है। पूरी तरह सफा करने के लिए तो उस हॉल के अंदर 1000 वाट का बल्ब जलाना पड़ेगा, तब जाकर वो पूरी तरह अंधकार का सफाया कर सकता है। लेकिन मेनबत्ती काफी अंश में तो अंधकार को हटा देगा उस कमरे के अंदर से। परंतु ये जो हृदय है वो तो अंगुष्ठ परिमाण का छोटा सा है, उसके अंदर मैं भी बैठा हूं, उसी के अंदर वो अज्ञान अंधकार है, उसी के अंदर आप भी बैठे हैं। मैं इसीलिए उसको पूरी तरह सफाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो प्रकाश है वो बहुत मंद है, क्योंकि मैं जीव हूं, क्योंकि मैं क्षुद्र हूं। शायद वो जुगनू की प्रकाश की तरह हो सकती है मेरी प्रकाश, लेकिन आपका प्रकाश तो ऐसा है ही नहीं। परमात्मा का जो प्रकाश है वो प्रकाश तो ऐसा है ही नहीं। तम कोटि सूर्य प्रभा, ऐसे ऐसे अंतरिक्ष के जो सूर्य हैं, ऐसे तो करोड़ों सूर्य के मिलने पर जो आभा बनती है, जो प्रकाश बनती है, कल्पना करो उतने प्रकाश तो आपके अकेला है। यही तो अर्जुन ने भी कहा, दिव्य सूर्य सहस्रांश तेजो राशि भवत यदि स्या सदृशी भास्यात भाषत तस्य महात्मना। हे महात्मा, हे कृष्ण, तुम्हारे शरीर में इस समय मैं जो आभा देख रहा हूं, जो प्रकाश देख रहा हूं, इतना प्रखर प्रकाश है कि ये आंखों से उसको सहन नहीं हो रहा है, आंख उसके सामने चौंधिया गई है। इसलिए कोई दूसरी दृष्टि दो तो मैं देखूं उस प्रकाश को, इस दृष्टि से तो देख ही नहीं सकता हूं। जब दूसरा दृष्टि दिया गया तो अर्जुन ने उस दृष्टि से देखा और बताया कि ओहो क्या प्रकाश है आपका उस विराट में। ऐसे सूर्य के जो प्रकाश हो तो हजारों सूर्य के बराबर आपका अकेले का प्रकाश है। शंकराचार्य जी तो 1000 में भी नहीं जा रहे, करोड़ में जा रहे हैं। तम कोटि सूर्य प्रभा, हे शिवा, आप में जो प्रकाश है इतना तीव्र प्रखर प्रकाश है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाश एक हो तो वो मान लो कैसा प्रकाश हो सकता हो, कितना प्रखर हो सकता हो, उतना प्रकाश तो आपके अकेले का है। और आप रहते कहां हैं है? ऐसे प्रकाश वाले आप रहते कहां हो हृदय में? और मैं कहां रहता हूं? मैं भी वहीं। और जो अनादि अज्ञान है, अविद्या है, वो कहां रहती है? वो भी वहीं। तो क्या बात है कि वो अभी तक नहीं हट रहा है? क्या आपकी शक्ति नहीं है उस अज्ञान को हटाने की? हम ये मान लें, आपके करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रखर प्रकाश की भी उस अंधकार को हटाने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ऐसा हम मान लें।